नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर जाएंगे। वे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री सप्त मंदिर और शेषावतार मंदिर भी जाएंगे। वे माता अन्नपूर्णा मंदिर में दर्शन के बाद राम दरबार गर्भगृह में पूजा अर्चना करेंगे। लगभग दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री पवित्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे। ये मंदिर निर्माण के पूरा होने और राष्ट्र की एकता तथा पारंपरिक विरासत के उत्सव का प्रतीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेने कुरुक्षेत्र जाएंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक विशेष सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। वे भगवान श्री कृष्ण के शंख के सम्मान में बनाए गए नवनिर्मित भवन पांचजन्य का भी उद्घाटन करेंगे। कुरुक्षेत्र में 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जारी है। छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के 15 सदस्यों ने कल आत्मसमर्पण कर दिया। इन पर लगभग 50 लाख रुपए का इनाम था। इनमें 10 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल हैं। इनमें कुख्यात पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के 4 सदस्य भी शामिल हैं। इस समूह ने सुकमा जिला पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक किरण चौहान के सामने आत्मसमर्पण किया। इस साल छत्तीसगढ़ में समर्पण करने वाले माओवादियों की संख्या 650 से अधिक हो गई है। केंद्र सरकार मार्च 2026 से पहले माओवाद को समाप्त करने के लिए संकल्पित है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दूसरे चरण की शुरुआत के बाद से 99% से ज्यादा गणना प्रपत्र मतदाताओं के बीच वितरित किए जा चुके हैं। अब तक 50 करोड़ 50 लाख से ज्यादा गणना पत्र वितरित किए गए हैं। SIR का दूसरा चरण 4 नवंबर को 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हुआ था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल उत्तर प्रदेश के बागपत में बड़ौत से दिल्ली और शामली के बीच 2 मेमू रेल सेवाओं को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मेमू रेलगाड़ियां छात्रों और पेशेवरों के लिए बेहतर यात्रा विकल्प प्रदान करेंगी, कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी और इनसे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।
दिल्ली शामली सहारनपुर गन्ने का बड़ा हब है ये, और यहाँ पर किसानों की छात्रों की बहुत एक बड़ी डिमांड है, जिस कारण से प्रधानमंत्री जी ने इस रूट पे बहुत ध्यान देकर कई अपग्रेड्स किए हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट किया है। 2 ट्रेन सर्विसेज चालू की गई हैं, जो कि दिल्ली को शामली से जोड़ेगी। इस लाइन को डबल करने का काम हाथ में लिया है और बहुत जल्दी दिल्ली से शामली वाले सेक्शन को डबल किया जाएगा।
नागरिक विमानन महानिदेशालय DGCA ने मस्कट उड़ान सूचना क्षेत्र और आसपास के इलाकों को प्रभावित करने वाली हालिया ज्वालामुखीय राख गतिविधियों के संबंध में सभी भारतीय विमानन कंपनियों को सुरक्षा परामर्श जारी कर दिया है। DGCA ने बताया है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और फ्रांस के टुलूज में स्थित ज्वालामुखीय परामर्श केंद्र ने ज्वालामुखीय परामर्श अष्टम जारी किया है। अष्टम विमानन कंपनियों को जारी किए जाने वाला एक विशेष संदेश है। इसमें विमानन कंपनियों को ज्वालामुखी विस्फोट या ज्वालामुखी से उठने वाले धुएं और राख के बारे में बताया जाता है। सरकार ने कहा है कि इस महीने की 21 तारीख तक 306 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में रबी फसल की बुआई हुई। कृषि मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि पिछले साल इसी दौरान लगभग 68 लाख हेक्टेयर की तुलना में 73 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में दलहन की बुआई की गई है। कृषि और किसान कल्याण विभाग ने कल रबी फसल की बुआई संबंधी प्रगति रिपोर्ट जारी की थी। भारत ने लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप जीत लिया है। ढाका में फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत ने ताइवान को 35-28 से हराया। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने भारतीय महिला कबड्डी टीम को जीत की बधाई दी है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।